وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈپریشن ایک تو ظاہری بات ہے اس کے میڈیکل جتنے بھی ایویڈنس ہیں وہ سب سمجھ میں آتے ہیں کہ باڈی میں جو بھی چینج ہو اور کیمیکل اور نیورو ٹرانسمیٹر کا جو بھی فنکشن اور امبیلنس ہو وہ سب اپنی جگہ ہے, جو اسکینرس میں دکھاتے ہیں اس سے تو انکار نہیں ہے ظاہری بات ہے, کیونکہ وہ سائنٹیفکلی پروون چیزیں اور اسلام بھی کوئی اس کے خلاف نہیں کہتا. لیکن اسلام میں بڑے کلیئر رولز اس میں بنے ہوئے ڈپریشن کے بارے میں, یعنی ڈپریشن کے بارے میں نہیں, ڈپریشن کیوں ہوتا ہے اس کے حوالے سے کچھ اشارے ملتے ہیں. مثال کے طور پہ قرآن بہت وضاحت سے, اچھا اس سے پہلے قرآن سے کی بات سے پہلے, ڈپریشن جو ہے وہ دو چیزوں کی وجہ سے ہوگا نا, یا تو کچھ چیزیں جو حاصل ہونی چاہیے تھیں اور امید تھی کہ یہ مل جائے گا وہ نہیں ملا, فوائد پر یعنی جو چیز فوت ہو جائے ہم سے, جو چلی جائے ہم سے, اس پر ڈپریشن ہوتا ہے آدمی کو, یہ کیا ہو گیا. اور بعض ان چیزوں پر ڈپریشن ہوتا ہے یعنی جو ہم حاصل نہ کر پائے ماضی میں, یا مستقبل میں جو ہم حاصل نہ کر پائیں گے اس کا خطرہ. تو یا تو ماضی پر پچھتاوا ہوتا ہے یا مستقبل میں کسی چیز کے نہ ملنے کا یقین بیٹھ جائے دل میں تو ہوتا ہے. ان دو صورتوں کے علاوہ تو کوئی تیسری صورت مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ ڈپریشن کی ہو. اور قرآن جہاں جہاں تذکرہ کرتا ہے وہ یہ کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم ہوگا. غم ماضی کے اوپر ہوتا ہے, جو چیزیں کھو جائیں, ضائع ہو جائیں, جو انسان حاصل نہ کر سکتا ہو یا کوئی غلطی اس سے ہو گئی ہو. اور مستقبل کے بارے میں خوف ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا, پتہ نہیں مل پائے گا کہ نہیں, پتہ نہیں میرا ٹارگیٹ اچیو ہوگا کہ نہیں. یہ دو ہی صورتیں ہیں کہ جو انسان کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور کر دیتی ہیں کسی درجے میں, اور یہ ہوتا شیطانی اثر سے ہے. اسی لیے ہمیں تعلیم یہ ہے کہ ہم گزرے ہوئے باتوں کے بارے میں یہ نہ کہیں کہ کاش میں نے ایسا کر لیا ہوتا. کاش کہنا فرمایا کہ شیطان کا عمل ہے, شیطان کے ذریعے ہوتا ہے. اسی طریقے سے مستقبل کی جو باتیں ہیں کہ اگر ایسا ہو جائے تو کتنا اچھا ہو, اس کو سوچ سوچ کے پریشان ہو رہے ہیں, اسی کی وجہ سے ٹینشن میں بیٹھے ہوئے کہ کیسے ہوگا. تو اس لیے قرآن یہ کہتا ہے کہ ہم نے ہر ہر چیز کو لکھ دیا ہے, اللہ فی کتاب من قبل ان نبرأها, اللہ تعالی نے ہر چیز کو پہلے سے, جو تم کو مصیبت پہنچتی ہے وہ پہلے سے لکھی ہوئی, دنیا کے باہر کے بیرونی معاملات ہوں یا اندرونی, یعنی تمہارے جسمانی معاملات ہوں, آفاقی ہوں یا انفسی ہوں, ہر قسم کے معاملات کو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے لکھا ہوا ہے. اس لکھے ہوئے ہونے سے اللہ تعالیٰ آگے اس کی جو وجہ بتاتے ہیں, علت بتاتے ہیں کیوں اس کو لکھ کے, ایک وجہ یہ بتاتے ہیں کہ لکیلا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم, تاکہ تم اس پر افسوس نہ کرو جو تم سے فوت ہو جائے, تو تم سے چھن جائے یا چلا جائے. کیونکہ آدمی کو فوراً تقدیر پر اللہ کے حکم پر بھروسہ ہو جاتا ہے کہ اللہ نے ایسا کیا ہے تو اللہ کی مرضی سے ہوا ہے, جب اللہ کی مرضی سے ہوا ہے تو بہت اطمینان ہوتا ہے. تو جیسے یہاں کہا نا کہ کسی بزرگ کا قول جو بڑا زبردست مجھے لگا, ایک تو یہ کہ اگر میری دعا اللہ قبول کر لے تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے, لیکن جب قبول نہ کرے تو اور زیادہ خوشی ہوتی ہے, کیونکہ قبول ہونے میں تو میری مرضی پوری ہوئی اور قبول نہ ہونے میں اللہ کی مرضی پوری ہوئی, جو زیادہ بہتر ہے, ہمیشہ فائدہ مند رہے گی میرے لیے. تو چونکہ ہمارا تعلق مع اللہ مضبوط نہیں ہوتا اتنا زیادہ, یا کمزور پڑ جاتا ہے گاہے گاہے, کبھی اوپر کبھی نیچے, تو ہم گناہوں کی وجہ سے, پریشانیوں کی وجہ سے, اپنے دنیاوی چکروں کی وجہ سے, چونکہ نفس تو بہرحال ان چیزوں کی طرف تقاضا بھی کرتا ہے, اور پھر جب یہ غلطی کر جاتے ہیں تو اس کے بعد پھر اس پر پچھتاتے ہیں کہ یہ کیوں کر دیا. تو اسی لیے قرآن نے پھر وہاں یہ حکم دیا کہ قل, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ ان سے کہہ دیجیے, یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم, اے میرے وہ بندو کہ جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی, ظلم کر لیا, گناہ کر کے یا غلطی کر کے, لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ, بے شک اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم, اللہ تعالیٰ بہت ہی معاف فرمانے والے, بہت ہی رحمت فرمانے والے. تو اللہ کی رحمتوں پر امید اور اپنے گناہوں پر ندامت इन दोनों के दरमियान होना चाहिए। तो खौफ और रजा, बीम और रजा जिसे कहते हैं, इन दोनों के दरमियान बैन बैन यानी रहेगा तो ये ईमान है। तो उसकी मिसाल उलमा ऐसे देते हैं कि सर एक परिंदे का वो ईमान है, दायां बाजू उसका उम्मीद और बायां बाजू उसका खौफ है। इन दोनों के दरमियान अपने ईमान के साथ अगर चलता रहेगा, खौफ और रजा के दरमियान, उम्मीद और खौफ के दरमियान, तो मामला बिल्कुल दुरुस्त रहेंगे। लेकिन एक भी बाजू हट जाए, ईमान हट जाए, तो फिर तो बात ही खत्म होगी। लेकिन एक बाजू भी कमजोर पड़ जाए तो परवाज ठीक नहीं होगी, परवाज में गड़बड़ होगी, उड़ान ठीक नहीं होगी। और इसीलिए इन दोनों में बैलेंस रखना बड़ा ज़रूरी है। चुनाचे से तुम्हारे फारूक एक तरफ तो ये फरमाते हैं कि अगर तमाम दुनिया के लोगों को जहन्नम में डाला जा रहा होगा तो मुझे उम्मीद होगी कि शायद एक बंदा जो जन्नत में जा रहा है वो मैं हूँ अल्लाह की रहमत से, और दूसरी तरफ ये भी कि तमाम लोग अगर जहन्नम में जा रहे हैं, जन्नत में जा रहे होंगे और एक जहन्नम में, तो मुझे खतरा होगा कहीं मैं तो नहीं हूँ अपने गुनाहों की वजह से। तो ये बैलेंस जो है ये बहुत ज़रूरी है। और चूंकि जो लोग अल्लाह से मुताल्लिक हो जाते हैं उनमें ये बैलेंस आ जाता है, अपने नफ्स को जान लेने की वजह से, अल्लाह ताला की मार्फत होने की वजह से, अपनी दुनिया की ज़िंदगी की बेमायगी और उसकी बेहैसियत होने की वजह से, तो इतना वो क्लियर होते हैं कि उनको इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होती। चुनाचे ये डिप्रेशन के जो मामलात हैं ये आपको नज़र नहीं आएगा, बहुत कम लोग होंगे कि जिनको हिस्ट्री में आपको पता चले कि वे फला डिप्रेस रहता था। किसी साहबी के बारे में ये नहीं मिलता था कि वो सर झुका के ऐसे किनारे में बैठे रहते थे। डिप्रेशन के जितने भी सिम्टम्स हम पढ़ते हैं और देखते हैं वो ज़माने में नज़र नहीं आते थे। और हमारे ख़ानदान में भी कुछ लोगों को इसका मसला रहा है, तो जितना रहता था मामला उनको जितना ज़्यादा समझाओ बुझाओ वो मसाइल हल नहीं होते थे। ता वक्त है कि अल्हम्दुलिल्लाह उनमें से अक्सर अब ठीक इसलिए हो गए कि सबका ताल्लुक अल्लाह के साथ जब मजबूत हुआ है और मजबूत हो गया पहले से ज़्यादा, तो मामला ठीक हो गया, तवक्कुल हो गया, भरोसा हो गया, अल्लाह से मोहब्बत हो गई, समझ में आ गया कि अल्लाह जो कर रहे हैं मेरे लिए वही बेहतर है। इसीलिए आज भी ईमान वाले लोग कितनी आसानी से उन तकलीफ़ों को बर्दाश्त कर जाते हैं कि जिन तकलीफ़ों पर बाहर वाले लोगों को तो शायद खुदकुशी करने का मौका मिल जाए, और हमारे यहाँ इतना कॉमन नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। अब भी जहाँ डिप्रेशन और इस तरह की चीज़ें हो रही हैं उसकी वजह यही है कि या तो माजी पर अफसोस है, पछतावा है, या मुस्तकबिल का खौफ और गम और बेचैनी है, तजब्जुब है कि पता नहीं क्या होगा, इन दोनों चीज़ों को सोचते रहते हैं। नतीजा ये है कि इस जहालत की वजह से, इस बेवकूफ़ी, ये शैतान का असर है। इसीलिए फरमाया ना कि ये शैतान के असर से होता है कि अब ये कैफियत ये हो जाती है कि आदमी मुस्तकिल इन दोनों में सोचने में या उधर उधेड़बुन में लगा हुआ है, जो हाल है उसको भी ज़ाया कर रहा है। यही हाल जिसके लिए वो परेशान था जबकि ये मुस्तकबिल था, अब ये उसमें दाखिल हुआ है तो उसको संवारने के बजाय इसको अपने माजी की तरह ख़राब कर रहा है ताकि इस पर फिर पछताता रहे। तो ऐसा घनचक्कर बना देता है शैतान इसको, डाउनवर्ड स्पायरल में डाल करके आदमी यही सोचता रहे, कभी अपने इसलाह करने की तरफ उसकी तवज्जो ही न जाए। इसलिए बुजुर्गों का कौल यह है कि अफ़दलुल इल्म इल्मुल हाल, सबसे ज़्यादा बेहतरीन और फ़ायदे का इल्म उस वक्त का इल्म है, उस ज़माने का इल्म है, यानी जो मैं इस वक्त वक्त गुजार रहा हूँ, इस वक्त मेरे लिए सबसे अहम काम क्या है, वो अफ़दलुल अमल हिफ्ज़ुल हाल, और सबसे बेहतरीन अमल वो अमल है कि मैं उस वक्त पे वो जो काम करना चाहिए उसको कर लूँ, उस वक्त को, उस अपॉर्चुनिटी को, उस टाइम को सीज कर लूँ, उसको वो कर डालूँ जो काम करना चाहिए। तो मिसाल के तौर पे ये वक्त है नमाज का और मैं इस वक्त नमाज की जगह बैठ के तकरीर कर रहा हूँ, अगर तो ज़ाहिर मतलब या तो मुझे इल्म है हो या इल्म नहीं है, इल्म है तो भी ज़्यादा गुनाहगार हूँगा, नहीं इल्म है तो जहालत की वजह से फिर इल्म हासिल क्यों ना किया और फ़र्ज़ नमाज छोड़ के इस वक्त जो है इस काम में लगे हुए। तो बज़ाहिर दो नेक काम है, और लेकिन ये देखना है कि कौन सा काम किस वक्त करना है। तो उस वक्त को सही तरीके से इस्तेमाल करना ये है हमारा तरीका। इस पे जब हम आ जाएंगे इंशाल्लाह ताला तो ना माजी पे गम होगा ना मुस्तकबिल की फ़िक्र होगी, और इन दोनों सूरतों से निकलते ही, अल्लाह से ताल्लुक़ मजबूत होते ही आदमी जो है आहिस्ता आहिस्ता डिप्रेशन की बीमारियों से, परेशानियों से निकल जाएगा। एक तो चीज़ ये है, ये तो उसूली बात हुई डिप्रेशन से मुताल्लिक। एक और चीज़ है जिसको हम कहते हैं ये कब्ज़ व बस्त की कैफियत। ये कैफियत है, ये डिप्रेशन जो है जो टेम्परेरी होता है, जो फुल ब्लोन डिप्रेशन नहीं है, तो उसकी मैंने बात की पूरी। एक इसके अलावा कैफियत है जो टेम्परेरीली इंसानों पर आती है, उसको कहते हैं कब्ज़ की कैफियत, कब्ज़ जैसे कहते हैं उसी को, इनकबाज़, रूहानी इनकबाज़ होता है। और एक बस्त की कैफियत, खुशी की दिल फैला हुआ, एक्सपेंड हुआ हुआ। ये जो दो कैफियत हैं ये मोमिनों पर आती रहती हैं, ये आमाल के साथ है, क्योंकि अपने गुनाहों पर नजर करता है तो गुनाहों पर अफसोस करता है, तौबा इस्तिगफार करता है, लेकिन क्योंकि इन दोनों एक्सट्रीम्स में रहता है, कभी अच्छा काम हुआ तो बहुत खुशी हुई, बुरा काम हुआ तो दिल धड़म बुझा गया, और इन्हीं कैफियत का होके रह जाता है, कभी इस तरफ कभी उस तरफ। तो जब अच्छी कैफियत में रहता है तो दिल चाहता है कि हर वक्त ऐसी कैफियत रहे, और जब इनकबास की कैफियत हो तो बड़ी परेशानी होती है कि भाई मैं इम्बिसात में ही रहता है, इनकबास में कहाँ से आ गया, परेशानी में कहाँ से आ गया, और उस कैफियत की वजह से फिर उसके आमाल ख़राब होने लगते हैं, जो कि ठीक नहीं है। करना ही चाहिए कि उस वक्त भी ये आमाल मजीद किए जाएँ। इसकी मिसाल ऐसे है कि एक्सरसाइज करना शुरू की तो मसल्स में कुछ दर्द होना शुरू हुआ, तो वो उस वक्त उस काम को छोड़ा नहीं जाता, बल्कि काम रेगुलर किया जाएगा, एक्सरसाइज की जाएगी, तो इंशाल्लाह ताला वो दर्द भी आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगा। इनकबास जो है, ये कब्ज की जो कैफियत है रूहानी, वो महमूद है, ज्यादा ज्यादा अफजल है इंबिसात की कैफियत से, इसलिए कि इंबिसात में आदमी के अंदर थोड़ा सा अजुब, अपनी बड़ाई, तकबर, अपना एहसास, अपने बारे में कोई अच्छा गुमान, ये पैदा होने का खतरा होता है, जबकि इनकबाज में आदमी अपने आप को और हकीर और बुरा और गुनाहगार समझता है, और उसकी गुनाहों पर नजर होती है। इसलिए मौलाना शफरी साहब थानवी रहमतुल्लाह फरमाया करते थे कि इनकबास की कैफियत ज्यादा महमूद है, ज्यादा अफजल है इंबिसात के मुकाबले में, तो इसलिए इसकी फिक्र में नहीं पड़ना चाहिए। असल में शुरू के स्टेजेस में जब आदमी अल्लाह की राह में चलना चाहता है और अस्कार और तस्बीहात का मामूल शुरू करता है, कुछ पाबंदियां अपनी इबादत में लाने लगता है, तो उसको थोड़ी सी परेशानी होती है शुरू शुरू में ज्यादा, फिर बाद में आहिस्ता आहिस्ता इतिदाल पे जब वो आ जाता है तो फिर वो इन दोनों कैफियात के एक्सट्रीम्स पे नहीं जाता, बल्कि बीच बीच में रहता है, और उन कैफियात को वो इग्नोर करता है, इसलिए कि वो इन कैफियात में उलझ कर नहीं रह गया। ये दोनों खुद हिजाब बन जाते हैं अल्लाह ताला के ताल्लुक में, कि आदमी इन कैफियात का ही होकर रह गया, तो इन कैफियात के ऊपर फिक्र नहीं करना चाहिए। जो पहले उसूल बताया वही, कि इस वक्त मुझे करना क्या चाहिए वो करूँ, बेदिली से करूँ या बादिली से करूँ, दिल के साथ करूँ या बगैर दिल के करूँ, कैफियत कुछ भी हो काम पूरा करना है। शैतान को अगर एक दफा ये यकीन हो जाए, नफ्स को अगर ये इत्मीनान दिला दिया जाए कि काम तो मुझे हर हालत में करना है, कुछ भी हो जाए, भले इसकी मुझे वो रूहानी फवायद नजर आए या ना आए, और उसमें वो बरकतें नजर आए या ना आए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सब जिमनी है, वो सब ट्रेनिंग का हिस्सा है। एक वक्त आता है कि आदमी फिर उन कैफियात को हमेशा के लिए पा लेता है, लेकिन वो कैफियात उस वक्त फिर मतलूब नहीं रहती, तो उससे वो बिल्कुल ही जैसे कहते हैं मुस्तगनी हो जाता है। तो जो इस्तगना की जो कैफियत है, फिर महज अल्लाह ताला से ताल्लुक के अलावा उसे कोई चीज़ समझ में नहीं आती। तो लेकिन ये सारे स्टेजेस हैं, तो इस डिप्रेशन का जो हम सबको हल्का हल्का कभी कभी हो जाता है, ये इनकबास की कैफियत है, और इस कैफियत में ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए, इसलिए कि ये जैसा कहा कि ट्रेनिंग में ऐसा होता है, आदमी जब तरक्की करता है, और ये बिल्कुल महमूद है, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, और इसका कतई ये मतलब नहीं होता कि आदमी पर अल्लाह ताला की रहमत कम हो गई है या आदमी कहीं गुनाहों में ज़्यादा पड़ गया, बल्कि गुनाह का इस्तेहजार ज़्यादा हो जाता है उस वक्त, और ज़्यादा अपने कामों को बेहतर करना चाहिए, और जब अच्छे हालात हो उस वक्त भी मुस्तकिल अच्छे काम करते रहना चाहिए। तो जब आदमी इतदाल पर आ जाएगा तो फिर एक्सट्रीम से निकल जाएगा और कैफियत अच्छी हो जाएगी। अल्लाह ताला हमें समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए।